खुदावंद के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि हम खुदावंद के कलाम में से सीख रहे हैं, इफ़्सियों का ख़त उसका चौथा बाप हम आखिर तक पहुंच चुके हैं। हमने कल सीखा था कि बाइबल मुकद्दस में हमें चार अनाजील मिलती हैं, मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील, लूका की अंजील और यहोना की अंजील। ये लिखी अनाजील खुदावन का बंदा मत्ती जो महसूल लेने वाला था, खुदा का बंदा मरकस जो गैर कहता है कि गैर कौमों को लिखता है, खुदावन का बंदा लूका तबीब जो यूनानी था, जो डॉक्टर था, जिसने यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में लिखा, खुदावन का बंदा यहोना यीशु मसीह के उन प्यारे शागिर्दों में से। इन सब का मकसद यही था यीशु मसीह के बारे में बोलना, लिखना और अपनी ज़िंदगी से उसकी गवाही देना। अंजील को इंग्लिश में गॉस्पल, उर्दू में अंजील और फिर क्या कहते हैं, खुशखबरी, खुशखबरी का पैगाम। हम सब को बाइबल मुकद्दस बहुत से नामों से खुदावन खुदा कहकर पुकारता है। बाइबल मुकद्दस में बहुत से हमें लकब, बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत से नाम दिए गए हैं। उन 100 से ज़्यादा नामों में एक नाम क्या है, हम मसीह के क्या हैं, एलची हैं, एलची मसीह के नुमाइंदे, नुमाइंदगी करने वाले। और इस किताब पर मैं गौर कर रहा हूँ और मेरी दुआ है कि खुदावंद ये मुमकिन करे कि इस किताब को लिखा जाए और इस किताब का नाम रखा जाए यीशु मसीह की पांचवी अंजील, और वो पांचवी अंजील आप और मैं हैं। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी कि उसने हमारी ज़िंदगी में क्या क्या किया है, उसकी गवाही। इसलिए हमें पांचवीं अंजील होते हुए जिस माहौल, जिस मुल्क में हम रहते हैं, बहुत दफ़ा हम खुलेआम मनियादी नहीं कर सकते, लेकिन पालूस रसूल इसके बारे में कहता है कि तुम मुझे कैद कर सकते हो जंजीरों से, लेकिन उस पैगाम को कैद नहीं कर सकते। सो हम चाहे कैसे भी हालात में रहते हों, इब्तदाई कलीसिया को देखें तो इब्तदाई कलीसिया में हमें हर जगह पर मसीही शहीदों का खून, उनकी गवाही, उनका दुख, उनका सताया जाना, उनका घरों से घर बेघर किया जाना नज़र आता है। हमें ऐसे हालातों का अभी सामना नहीं है। पुराने अहदनामा में हमें बहुत सी कहानियां मिलती हैं कि छोटी बेटी इसराइल के घराने की, इसराइली, वो गैर अकवाम के घर में गुलाम बना कर ले जाते हैं उसे, और वो वहाँ पर रहकर उस फौजी दरोगा के घर में वो रहकर, जिसका नाम नमान कोड़ी था, नमान कोड़ी के घर में रहती है, वहाँ पर खिदमत करती है, गुलामी में है, लेकिन वो अपने जिंदा खुदा को, इसराइल के खुदा को ना भूली। और मुख्तसर कहानी क्या है कि उस नमान कोड़ी को क्या था, कोड़ था, किसी को भी उससे वाकफियत ना थी। जब उस लड़की ने सुना, जब उस लड़की ने जाना, तो उसने कहा कि एक खुदा का नबी है, उसका नाम अलीशा है, जो दुआ करेगा और खुदा यकीनन तुझे शफा देगा। अब क्या हुआ, वो ज़बरदस्त सूरमा, वो तकब्बर से, ज़ोर से इख्तियार रखने वाला सूरमा गया, उसने सोचा कि रुपया, पैसा, सोना चांदी उसे शफा देगा, लेकिन खुदा के नबी ने उसे सादा सा काम करने के लिए कहा कि दरियाए यर्दन के इस पानी में 7 गोते लगा। और आगे से यहाँ पर वहाँ पर हमें बहुत कुछ मिलता है, आगे पीछे सवाल जवाब के वो दरोगा कहता है कि हमारे शहर में हमारे नज़दीक तो फरफर और मरीबा का जो दरिया है वो साफ सुथरा है, वो बहता है। अगर गोतों से मुझे शफा हो सकती तो मैं वहाँ पर क्यों ना लेता। और उसके एक सियाने सिपाही ने उससे कहा कि मालिक, उस्ताद या मोहतरम इज्जतवार वाला जो उसका ओहदा है, किस नबी ने तुझसे कोई बड़ा काम करने के लिए नहीं कहा? इसने तो यही कहा है कि गोता लगा और तुझे शफा हो जाएगी। अगर वो तुझसे कोई बड़ा काम करने को कहता तो तू जरूर कर देता। फौजी रवैया क्या है कि वो मुश्किल काम करना चाहते हैं, आसान काम नहीं करना चाहते। ये फौजी रवैया नहीं, ये इंसानी रवैया है, ये इंसानी फितरत है। हम इंसान आसान काम को बहुत दफ़ा मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं। खुदा कहता है ये करो, हम उसमें तलाश करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह इसे कठिन बनाया जाए। जब जितना ज़्यादा हम मुश्किल करेंगे, जितनी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, हम कहेंगे हमने किया। सो उस फौजी के जहन में यही बात है, उस सिपा सलार के जहन में यही बात है, लेकिन खुदा के नबी ने कहा सिर्फ गोते लगा। एक गोता, दो गोता, तीन गोता, चार गोता, पांचवा गोता लगाया, अभी तक उसने नहीं कोई देखा कि उसको शफा हुई है। छठा गोता और सातवें गोते पर जब वो उतर पानी से बाहर आया तो क्या हुआ? उसका बदन बच्चे की मानद साफ हो गया। तो हम कैसे भी हालात में हों, हम हमारी ज़िंदगी, हमारा बोल किसी ना किसी तरह किसी की ज़िंदगी की तब्दीली का बायस बन सकता है। आप जहाँ कहीं भी काम करते हैं, आपकी ज़िंदगी, आपकी मौजूदगी ही यीशु मसीह की क्या है? मौजूदगी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। लेकिन सवाल ये है कि पालूस रसूल कहता है कि इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो। कब हम पांचवी अंजील बनेंगे? चलती फिरती खुली अंजील, अपने लबों से, अपने कदमों से, अपने उठने बैठने बोलने चालने से, जब हमारी ज़िंदगी से यीशु मसीह की ज़िंदगी ज़ाहर होगी। पिछले दिनों में अमेरिका ही में एक बम धमाका करने वाला गया तो उसने अपनी गवाही दी। वो मसीही नहीं था, वो गैर कवाम था। उसने गवाही दी और उसने कहा कि अगर कोई किसी बम धमाका करने वाले को बदलना चाहता है तो उसे मसीह की मोहब्बत दिखाओ। और उसने कहा कि मुझे मसीह की मोहब्बत मिली और मेरी ज़िंदगी बदल गई। और एक और वाक़या सऊदी अरेबिया अरबिया के इलाके का, वहाँ पर अखबार में आया, सऊदी अरब का एक प्रिंस जिसे शहज़ादा कहते हैं, उस पर खुदावंद यीशु मसीह रोया में ज़ाहर हुआ और उसने यीशु मसीह को कबूल किया और उसने अखबार में लिखवाया कि मैंने उस मसीह को जो इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा है देखा है, सुना है। और उसने क्या किया? यीशु मसीह को कबूल किया। अगर हम पांचवी अनाजील नहीं बनेंगे, यीशु मसीह का पैगाम नहीं बनेंगे, तो यीशु मसीह इस काबिल है कि वो खुद लोगों पर जाहिर हो। लेकिन यीशु मसीह का यह मंसूबा नहीं। यीशु मसीह चाहता है कि तुम मुझे जाहिर करो। किस तरह? अपने बोलने से, उठने बैठने चलने से, अपनी ज़िंदगी से। कभी आपने सोचा है कि मसीहियों में क्यों इतना ज़्यादा फसाद पाया जाता है? क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता, क्योंकि ये मसीही जो मसीह के मानने वाले हैं उस अबदी और इस ज़मीनी एतफाक का राज रखते हैं। हम मसीही بائبل مقدس کے مطابق معافی کا درس جانتے ہیں، کسی اور مذہب میں کوئی معافی نہیں ہے۔ دانت کے بدلے دانت، سب شریعت کے پیروکار ہیں، صرف مسیحیت ہے جو فضل معافی کا درس دیتی ہے، جس میں کوئی بھی حالت نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم پانچویں انجیل بنیں گے تو سارا جلال یسوع نام کو ملے گا، اگر ہم پانچویں انجیل نہیں بنیں گے تو دو واقعات، ایک بم دھماکہ کرنے والا بدل گیا کیونکہ اس نے یسوع مسیح کی اس خوشخبری کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سنا، اور اس نے کہا کہ اگر تم کسی ٹیررسٹ کو، انگلش کا لفظ ہے، آتنکوادی، بم دھماکہ یا خود خوش حملے کرنے والے کو بدلنا چاہتے ہو تو اسے یسوع مسیح کے بارے میں بتاؤ، وہ بدل جائے گا۔ دوسرا، سعودی عرب کا شہزادہ، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا، یسوع مسیح دیواروں کو، حدوں کو، سرحدوں کو پار کرتا ہوا اس کے گھر پہنچ گیا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ ان دو واقعات سے جب ہم یسوع مسیح کی انجیل بنیں گے تو زندگیاں ہمارے ارد گرد بدلیں گی۔ جب ہم یسوع مسیح کی انجیل، جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، یسوع مسیح اس قابل ہے کہ وہ ہر جگہ ہر وقت ایک ہی لمحہ میں موجود ہے، اس لیے ہمیں یسوع مسیح کی پانچویں خوشخبری کہا گیا ہے۔ کہانی گاہ میں کہتا ہوں کہ ہم یسوع مسیح کی پانچویں خوشخبری، وہ انجیل ہیں جسے چلتے پھرتے نظر آنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بولنے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے سے یسوع مسیح کی گواہی دینی ہے۔ اس لیے آئیں افسیوں 4:4 اس کی 31 آیت سے پڑھیں، جب ہم روح القدس سے معمور زندگی گزاریں گے، یعنی کہ روح القدس کی رہنمائی میں، روح القدس کی اس دھیمی اور میٹھی آواز کو سنیں گے، جب روح القدس کی اس آواز کو سنیں گے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے، تو ہم دنیا میں، جب یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو تو کیا کہا گیا ہے؟ کہ تم تاریکی کو دور کرنے کا وسیلہ بنو گے۔ جب یسوع مسیح نے کہا کہ تم زمین کا نمک ہو تو نمک کیا کرتا ہے؟ اگر کسی کھانے کو لمبے عرصہ کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو نمک لگا کے رکھ دیں، وہ خراب نہیں ہوگا۔ ہم اگر زمین کا نمک ہے تو ہم ان بے مزہ لوگوں کو نمکین کر سکتے ہیں، کس طرح؟ خوشخبری سے۔ اس لیے پالوس رسول کہتا ہے 31 آیت میں، ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و واگل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری فطرت میں پائی جاتی ہے آدم کے گناہ کے باعث، کہ ہم میں تلخ مزاجی، یعنی کہ ایسا مجاز جس میں کڑوا پن، حکے کے تمباکو بھی سے زیادہ بھی کڑوا رویہ، جو کسی کو خوشی نہیں بلکہ کھانسی ہی لگاتا ہے۔ قہر، غصہ، شور و گل، یعنی کہ جب کسی کے اختیار میں کوئی چیز نہ ہو، جب کوئی اپنا اختیار کھو دے تو وہ کیا کرتا ہے؟ شور پاتا ہے۔ جب بھی کسی بچے کو آپ چلاتا دیکھیں گے تو اس کے پیچھے یہی کہانی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے ہو نہیں رہا، اس لیے وہ چیخ چہاڑا پائے گا۔ سو جب ہم اپنا طاقت، اپنا اختیار، اپنی قوت کو کھو دیتے ہیں تو ہم کیا ڈالتے ہیں؟ شور ڈالتے ہیں۔ سو پالوس رسول کہتا ہے تلخ مزاجی کو، قہر کو، غصہ کو، شور و گل کو، بد گوئی کو۔ بدگوئی ہم کب کرتے ہیں یا کب ہوتی ہے؟ جب ہم ایک دوسرے کا سامنا نہیں کرتے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی بدگوئی کرتے ہیں۔ سو پالوس رسول کہتا ہے ان باتوں کو تم سے دور کیا جائے، تم سے دور کیا جائے۔ अगर पालूस कहता है कि ये दूर हो सकती हैं, तो इसका मतलब है कि वाकई ही ये दूर हो सकती हैं। सो हमें पांचवी अंजील बनने के लिए नहीं, हमें यीशु मसीह ने पांचवी अंजील बनाया है। जिस दिन हमें खुशखबरी मिली, इसका मकसद यही था कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। जहां पर चाइना में जो के बुद्ध मज़हब मुल्क है, जिसमें बुद्धा की और दूसरे बहुत से लोगों की प्रस्तुति की जाती है, खुदा माना जाता है, वहाँ पर बाइबल पर बैन लगा हुआ था कि बाइबल वहाँ पर तकसीम नहीं की जा सकती, बाइबल पढ़ी नहीं जाती। अगर किसी को पकड़ लेते थे तो उसे मार देते थे या फिर ऐसी जेलों में भेजते कि वो दोबारा सूरज नहीं देखते थे या दोबारा रहाई नहीं मिलती थी। चाइना के लोग यीशु मसीह की पांचवी खुशखबरी बन गए, पांचवी अंजील बने। किस तरह? जहां पर बाइबल नहीं जाती थी लोग जाते थे, वो कैद खानों में मसीह की मनादी, वो कैद खानों में यीशु मसीह की गवाही। जैसे पास्टर सईद जो ईरान में, उसने जैसे हमने यहां पर स्कूल शुरू किया है, यतीम खाना शुरू किया, और उसके बाद उसे आज कैद में किया हुआ है, और उसने अपनी कैद ही में क्या किया, यीशु मसीह की गवाही दी, मोहब्बत की, मोहब्बत का दर्स दिया, और सब्र करके ना कहर किया, ना गुस्सा किया, ना कोई और, यही कहता रहा कि खुदावंद का इसके पीछे मकसद है। कितने लोग, 30 कैदियों ने, ईरान के 30 कैदियों ने क्या किया कि जेल खाना में यीशु मसीह को कबूल कर लिया। पालूस रसूल इस बात को कहता है कि तुम मुझे कैद कर सकते हो, लेकिन इस पैगाम को जंजीरों में बांध नहीं सकते। हम ईमानदारों को यीशु मसीह ने यही कहा है कि कोई, जो कोई हमारे बदन को कत्ल कर सकता है वो रूह पर कोई इख्तियार नहीं रखता, लेकिन मैं बदन और रूह दोनों का मुख्तार हूँ, इख्तियार रखने वाला हूँ। इसलिए क्या लिखा है 32वीं आयत, एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। माफी, किसी और मजहब में हमें इसका दर्ज नहीं मिलता, अगर मिलता है तो उसके साथ शर्त है। माफी के साथ कोई चढ़ावा, माफी के साथ कोई बिनती, माफी के साथ ये, माफी के साथ वो। मसीही जिंदगी में, मसीहत में सादा, खुदावंद मैंने ये गलती की है, तेरे गुनाह माफ हुए। हमें ऐसा रवैया इख्तियार करने की जरूरत है। इससे पहले कि हम शहरारवाला में, मुल्क पाकिस्तान में जाएं, हमें अपने घरों से शुरू करने की जरूरत है। उसी तरह जिस तरह शागिर्दों को यीशु मसीह ने कहा, पहले यरूशलम, फिर सामरिया, फिर यहूदिया, और फिर दुनिया के हदों तक। हमारा यरूशलम यानी कि हमारा अपना घर, अपना कबीला, अपने लोग, उन तक हमें इस पैगाम को शफाफ तौर पर पहुंचाने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह जिंदों और मुर्दों का, दोनों का बचाने वाला है। अगर हम मरें तो मरें, अगर हम जिए तो उसके लिए जिए। इसलिए अगर आप गवाही नहीं बन सकते तो सादा तौर पर हिजकेल की किताब में लिखा है कि खुदा ऐसे लोगों को ढूंढता है कि जो रखने में खड़े हों। रखने पुराने दौर में कैसे होते थे? जब शहर की फसील यानी दीवारें बनाई जाती थी तो वहाँ पर एक रखना, एक पिलर होता था जो दरवाज़ा नुमा होता था। वहाँ पर लोग खड़े होकर देखते रहते थे, तलाश करते रहते थे कि दुश्मन तो नहीं आ रहा। और फिर रखने में खड़ा होने से मुराद यही भी कि लोग अपने आप को दुआ के लिए मखसूस करते थे कि मैं अपने शहर, अपनी कलीसिया, अपने लोगों के लिए, उनकी बहाली के लिए खुदा के हजूर खड़ा रहूँगा, दुआ करता रहूँगा, दुआ करती रहूँगी। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो जितनी ज़्यादा दुआ कर सकते हैं, रोज़े में टाइम गुजार सकते हैं, गुजारें कि खुदावंद बेदारी का सलाब भेजे, बेदारी से हर तरह की दीवारें, हर तरह की जंजीरें टूट जाएं। आए हम दुआ करें।